بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان لانے والو، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमारी वेबसाइट का पता बदल चुका है। फिर से बता देते हैं, parstoday.ir/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। तो दोस्तों, आज सोमवार है, बहमन की 24 और फरवरी की 13 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के सातवें महीने रजब की 22 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे, उसके बाद आपकी सेवा में पेश किया जाएगा कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, और उसके बाद जो कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया जाएगा वो है विश्व दर्पण, और उसके बाद आज की सभा के अंत में आपकी सेवा में जो कार्यक्रम पेश किया जाएगा वो होगा सेहत का राज। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी और मरियम मेहरदादी से सुनेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। चीन के पीपुल्स डेली अखबार में राष्ट्रपति रईसी के लेख ने मचाई धूम, सुनहरे भविष्य के लिए पुराने दोस्त सबसे अच्छे साथी। ईरान दुश्मनी में मानवाधिकार की सारी सीमाओं को लानते अमेरिका और यूरोपीय देश अपराधियों को अपने दिल में बैठा रहे हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद करने वाले देशों में ईरान और भारत सबसे आगे। आतंकी इसराइली सैनिकों की फायरिंग में 14 वर्षीय फिलिस्तीनी युवक शहीद। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणराज ईरान के राष्ट्रपति ने चीनी समाचार पत्र पीपल्स डेली में एक लेख में तेहरान और बीजिंग को कठिन परिस्थितियों में मित्र के रूप में वर्णित किया। राष्ट्रपति रईसी ने इस लेख में लिखा है कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की ईरान की नीति क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना जारी रहेगी। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी गणराज ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने अपनी आधिकारिक बीजिंग यात्रा के मौके पर समाचार पत्र पीपल्स डेली में सुनहरे भविष्य के लिए पुराने दोस्त सबसे अच्छे साथी होते हैं के शीर्षक के तहत अपने लेख में लिखा है कि ईरान और चीन की सरकारें जिन्होंने व्यापक रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम को अपनी स्थायी बातचीत के लिए एक मॉडल के रूप में चुना है, वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में दोनों देशों की समानताएं और समान दृष्टिकोण है। राष्ट्रपति रईसी ने आगे लिखा कि दोनों देश तानाशाही व्यवस्था और एक पक्षवाद के खिलाफ हैं और सभी देशों के अधिकारों और हितों का सम्मान करने की जरूरत पर जोर देते हैं। ईरान के राष्ट्रपति द्वारा लिखे गए लेख में آیا ہے کہ اسلامی گنراج ایران اسلامی سدھانتوں اور سبھی دھرموں اور سنسکرتیوں کے سمان کے آدھار پر ہمیشہ سے کٹر پنتھ اور آتنکواد کے خلاف ہے۔ انہوں نے لیکھ میں اس پر بھی بل دیا ہے کہ کٹر پنتھ اور آتنکواد اسلام کی شکشاؤں اور مانویہ سکھ کے وپریت ہے۔ رئیسی نے اس لیکھ میں الیکھ کیا ہے کہ تکفیری آتنکوادی گٹ داعش سے سنگھرش اور دنیا کے پورو اور پشچم میں اس کے پرسار کو روکنے میں ایران کا سفل انوبھو انگت کرتا ہے کہ ایران کی شکتی ایک سرکشا نرمان شکتی ہے اور اس کی شیتریہ شمتائیں دیشوں میں شانتی اور استھرتا کا سمرتھن کرتی ہے۔ ایران اپنی شکتی کا اپیوگ کیول سامراجوادی اور اہنکاری شکتیوں کے خطرے سے نپٹنے کے لیے کرتا ہے۔ راشٹرپتی رئیسی نے بل دیا کہ اسلامی گنراج ایران دنیا کے سبھی دیشوں وشیش روپ سے چین جیسی متر شکتیوں کے ساتھ مضبوط سمبندھ چاہتا ہے۔
اسلامی گنتنتر ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا نے یہ بات بل دے کر کہی ہے کہ اویدھ انشاسن ایران کے خلاف سینیہ کاروائی کرنے میں اسمرتھ ہے۔ اسلامی گنراج ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا ناصر قنعانی نے سوموار کو اپنی ساپتاہک پریس وارتا میں امریکہ اور اسرائیل کے سنیکت سینیہ ابھیاس کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی اور سے اویدھ انشاسن کو اس کی سرکشا ورودھی اور آکرامک کاروائیوں کے بار بار منہ توڑ جواب کاروائیوں سے بار بار منہ توڑ جواب ملتا رہا ہے اور وہ اس کا سواد بھی چکھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ زائنی شاسن کا سہیوگی اور پورن سمرتھک ہے، اس لیے اسے اس اویدھ شاسن کے کاریوں کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ودیش منترالے کے پروکتا نے امریکہ میں اسلامی کرانتی کے خلاف ہونے والے پردرشنوں میں ساوک کے اتیاچاری ایجنٹوں پرویز ثابتی کی اپستھتی کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مانواधिकारوں کا دعویٰ کرنے والی سرکاریں اب اپرادھیوں کی پراجک بن گئی ہیں۔ ایک ایتہاسک اپرادھی جس کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ لوک تنتر کا دعویٰ کرنے والے دیش کے دل میں موجود ہے۔ ناصر غنانی کہا کہ کل ملا کر اپرادھیوں کو پناہ دینا یہ ایران کے خلاف امریکہ کی دشمنی کا ایک اور پرتیک ہے۔
ترکیہ اور سیریا اس سمے بھیشن بھوکمپ سے ہونے والی بھاری تباہی سے جوجھ رہے ہیں، وہیں اس کٹھن سمے میں ان دونوں دیشوں کی مدد کرنے والے دیشوں میں ایران اور بھارت سب سے آگے ہیں۔ پراپت رپورٹ کے مطابق ایک اور جہاں امریکہ اور یورپی دیشوں دوارا سیریا پر لگائے گئے پرتیبندھ بھوکمپ پیڑتوں کی مدد میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہیں اسلامی گنراج ایران اور بھارت ان دیشوں کے لوگوں کی ہر سمبھو مدد کرنے کا اتھک پریاس کر رہے ہیں۔ ایران سے اب تک سیریا کے بھوکمپ پیڑتوں کی مدد کے لیے 6 مالواہک ہوائی جہازوں سے 150 ٹن سے ادھک آوشک سماگری جا چکی ہے۔ وہیں ترکیے میں بھی ایران کی کئی بچاؤ ایوم راحت ٹیمیں یدھ استر پر کام کر رہی ہیں۔ ترکیے کے رکشا منترالے کے انوروھ پر اسلامک گنراج ایران کی سینا نے ترکیے کے ادیمان میں ایک فیلڈ اسپتال تیار کیا ہے۔ اس اسپتال میں 50 بیڈ کے علاوہ آپریشن تھیٹر، ICU، راڈیولوجی اور میڈیکل اسٹور بھی شامل ہے۔ وہیں بھارت نے شنیوار کو بھوکمپ پربھاوت ترکی اور سیریا کے لیے 35 ٹن سے ادھک راحت سامگری کے ساتھ ایک سین بھاری لفٹ ویمان بھیجا ہے۔ بتا دیں کہ بھارت کی اور سے یہ 7ویں اڑان تھی جو بھوکمپ سے پربھاوت دونوں دیشوں کے لوگوں کے لیے راحت سامگری لے کر پہنچا ہے۔
اویدھ قبضے والے ویسٹ بینک استھت جنین شہر میں اسرائیلی سینکوں کے حملے میں زخمی ہونے والے ایک فلسطینی بچے کی موت ہو گئی ہے۔ 14 ورشیہ فلسطینی بالغ قوسے رضوان کی رویوار کو اس سمے شہادت ہو گئی جب اسے اسرائیلی سینکوں کے حملے میں زخمی ہونے کے بعد اسپتال لے جایا گیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سینکوں نے رویوار کو جنین پر دھاوا بول دیا تھا جس میں کئی فلسطینی ناگرک گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے تھے۔ فلسطینی سواستھ منترالے کا کہنا ہے کہ رضوان اور انیہ گھائلوں پر اسرائیلی سینکوں نے سیدھے فائرنگ کی تھی۔ رضوان کی موت کے ساتھ ہی 2023 کی شروعات سے اسرائیلی سینکوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی سنکھیا 47 ہو گئی ہے۔
سوموار کو تڑکے اسرائیلی لڑاکو ویمانوں نے غزہ پٹی پر بمباری کی ہے، جس کے بعد علاقے میں کئی بھیشن دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق سوموار کو زیونی لڑاکو ویمانوں نے غزہ پٹی کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بیچ زیونی سینا کے پروکتا اویخی ادرئی نے دعویٰ کیا کہ سوموار کو تڑکے کیے گئے حملوں میں غزہ استھت بھومی گھٹ 8 لکشوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں حماس کے راکٹ بنائے جاتے ہیں۔ وہیں غزہ پر اسرائیل کے ہوائی حملے کے بعد حماس اور فلسطینی پرتیرودی سنگٹھنوں کی جوابی کارروائی کے ڈر سے اویدھ ادھیکرت علاقوں میں استھت اویدھ زیونی بستیوں میں وہ خطرے کے سائنج گونج اٹھے۔
اسرائیل کے ٹی وی چینل 7 کی رپورٹ کے مطابق تیل آویو نے بحرین کے ایک دویپ کو خرید لیا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رویوار کو یہ خبر ٹی وی چینل کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ زیونی شاسن فنڈڈ کمپنی ہیمنوتا نے فارس کھڑے سے بحرین کے ایک دویپ کی خریداری کی ہے۔ ٹی وی چینل کی ویب سائٹ پر پرکاشت ہونے والی خبر میں بتایا گیا تھا کہ خریدے گئے دویپ کا کھیترفل 9,554 میٹر ہے، جس کا سودا 21.5 ملین ڈالر میں کیا گیا ہے۔
سعودی پولیس نے پوتر شہر مکہ میں عمرہ کرنے گئے پاکستانی شیعہ مسلم دھرم گرو سید نذیر عباس تقوی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پراپ رپورٹ کے مطابق شیعہ ودوان اور اسلامی تحریک پاکستان آئی ٹی پی کے سینئر کارکرتا تقوی کو پوتر مسجد الحرام کے پریسر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ حالانکہ سعودی پولیس یا شاسن دوارا آدھیکارک روپ سے مولانا تقوی کی گرفتاری کے لیے کوئی کارن نہیں بتایا گیا ہے، لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے گرفتاری سے ٹھیک پہلے ہاتھ میں ایک ایسا بینر اٹھا رکھا تھا جس پر شیعہ مسلمانوں کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب کا نام لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی مولانا تقوی کو گرفتاری کی خبر سامنے آئی، سوشل میڈیا پر انہیں ترنت آزاد کیے جانے کے سمرتھن میں ابھیان شروع ہو گیا۔
سیریا اور ترکی میں آنے والے زوردار بھوکمپ کے بعد ملبے میں دبے لوگوں کا نکالنا لگاتار جاری ہے، جس کے بعد اس بھوکمپ میں مرنے والوں کی سنکھیا 33,000 ہو گئی ہے۔ بھوکمپ سے ترکی میں سوموار تک کم سے کم 29,605 اور سیریا میں 3,500 سے ادھک لوگ مارے گئے ہیں۔ سیریا میں مرنے والوں کی سنکھیا پچھلے 2 دنوں سے اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہے۔ ترکی شہر اسکندر میں مرنے والوں میں 50% کی پہچان نہیں ہو سکی ہے۔ بچاؤ کرمیوں کا کہنا ہے کہ شووں کو پورے سمان سے دفنایا جا رہا ہے۔
دلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کے 34ویں عام ادھیویشن میں مولانا اشرف مدنی نے دیش میں جاری مسلم ورودی لہر اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوششوں کی کڑی آلوچنا کی ہے۔ رویوار کو سمیلن کے آخری دن مولانا مدنی نے کہا کہ ستاداری ورگ دوارا آج سناتن اور گھر واپسی کے بہانے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں یا تو دیش سے نکال دینے اور یا پھر گھر واپسی کی دھمکی دی جا رہی ہے۔
اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم لے کر حاضر ہیں، قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ امریکہ میں اسلامی کرانتی ویرودھی جماوڑا، نیتن یاہو کے ورودھ بڑھتے پردرشن اور بنگلورو میں ایرو انڈیا پردرشنی۔ دوستوں، ان مدوں پر کاریکرم میں ہم وستار سے چرچا کریں گے۔ ایران میں کرانتیکاریوں کو یاتنائیں دینے والا کخیات ثابتی دشکوں کے بعد امریکہ کے لاس اینجلس میں دکھائی دیا۔ विस्तार से बता रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
11 फरवरी 1979 को ईरान की इस्लामी क्रांति सफल हुई थी। इस अवसर पर इस्लामी क्रांति के समर्थक देशों के नेताओं ने जहां इस वर्ष भी इस्लामी क्रांति की सफलता के शुभ अवसर पर बधाई दी, वहीं कुछ स्थानों पर क्रांति विरोधी जमावड़े भी हुए जिसमें इस्लामी क्रांति के विरोधी तत्वों ने भाग लिया। इस्लामी क्रांति की सफलता से पूर्व ईरान में सावाक नाम की इंटेलिजेंस थी जो बहुत ही खूंखार और लोगों विशेषकर इस्लामी क्रांति के समर्थकों को बहुत प्रताड़ित करती थी। इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले परवीज साबती नाम का व्यक्ति सावाक का एक सक्रिय सदस्य व प्रमुख था। वो वर्षों से अलग थलग का जीवन बिता रहा था, पर इस वर्ष 11 फरवरी को लॉस एंजलिस में ईरान की इस्लामी क्रांति के विरोध में जो जमावड़ा हुआ था उसमें उसने अपने परिजनों के साथ भाग लिया। साबती सावाक का प्रमुख था, उसे सावाक में नंबर एक का व्यक्ति समझा जाता था। 1337 हिजरी शमसी में सावाक का गठन हुआ था। उसके गठन के आरंभ से ही परवीज साबती उसका सक्रिय सदस्य था। सावाक की 10 प्रमुख ब्रांचें थीं। सावाक की एक ब्रांच पर ईरान के आंतरिक सुरक्षा मामलों की जिम्मेदारी थी जिसमें परवीज साबती ने सावाक के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाई और वो क्रांतिकारी लोगों को यातना देने और प्रताड़ित करने में बहुत मशहूर हो गया था। पर जब ईरान की इस्लामी क्रांति अपने शिखर पर पहुंच गई और उसकी सफलता के चिन्ह स्पष्ट हो गए तो परवीज साबती 9 आबान 1357 हिजरी शमसी को ईरान से भाग गया और 33 साल तक उसका अता पता नहीं था। पर 1388 हिजरी शमसी में जब ईरान में इस्लामी क्रांति विरोधी घटनाएं हुई तो उसके बाद उसने पहली बार इंटरव्यू दिया, परंतु उस समय भी उसकी तस्वीर प्रकाशित नहीं हुई थी। परंतु इस बार जब लॉस एंजलिस में इस्लामी क्रांति के विरोध में जमावड़ा हुआ तो उसमें परवेज साबती की बेटी ने ट्विटर पर अपने परिजनों की तस्वीर प्रकाशित की जिसमें परवेज साबती भी था। उसकी बेटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि 44 साल पहले हमारा देश अंधकार में चला गया और उसने उम्मीद जताई कि ये साल नया साल होगा। ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के अवसर पर अमेरिका में क्रांति विरोधी जमावड़े में सावाक के कुख्यात व्यक्ति और उसके परिजनों का जाहिर होना ध्यान योग्य बिंदु है, वो भी ईरान में हालिया उपद्रव और अशांत की घटनाओं के बाद। जानकार हलकों का मानना है कि ये इस बात का खुला प्रमाण है कि अमेरिका ईरान की इस्लामी क्रांति के विरोधी तत्वों का पालनहार, अन्नदाता और शरणदाता है। यही नहीं, अभी अमेरिका ने आतंकवादी गुट MKO का नाम आतंकवादी गुटों की सूची से बाहर निकाल दिया। ध्यान योग्य बिंदु यह है कि अमेरिका एक ओर आतंकवाद से मुकाबले का दम भरता है और दूसरी ओर कुख्यात आतंकवादी गुट MKO को आतंकवाद की सूची से बाहर निकालता है। अमेरिका का ये कदम उसके दोहरे रवैये और मापदंड का सूचक है। इसी तरह बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि आतंकवादी गुटों और तत्वों के अस्तित्व में आने और उनके बाकी रहने की मुख्य वजह अमेरिका और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वालों का दोहरा मापदंड है। और आज जो लोग आज़ादी, महिला और जीवन जैसे नारे लगा रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि 44 साल पहले शाह और उसके सुरक्षा कर्मियों ने लोगों का जो बड़ी ही निर्ममता व क्रूरता से दमन किया था वो क्या था और उस समय ये नारे क्यों नहीं लगाए गए। उस समय मानवाधिकार की रक्षा के दावेदार कहाँ थे जबकि आज हर ईरानी पूरी तरह आज़ाद है और वो पूरी आज़ादी के साथ अपनी बात कह सकता है और कह रहा है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
नेतन्याहू की सरकार के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उनके विरुद्ध किए जाने वाले प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में एक समीक्षा के साथ हाजिर हैं सैयद मीसम।
अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों या इसराइल में न्यायिक सुधारों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस योजना के विरोधियों और समर्थकों के बीच जारी टकराव के दौरान सरकार की गुणवत्ता के लिए आंदोलन नामक एक संगठन ने ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका के मुताबिक नेतन्याहू उन कानूनों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे से जुड़े मामले में दखल देने से रोकते हैं। इस आंदोलन ने ज़ायोनी शासन के सर्वोच्च न्यायालय से नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद के लिए अपात्र घोषित करने के लिए कहा है। सरकार की गुणवत्ता के लिए आंदोलन नेतन्याहू के मंत्रिमंडल की न्यायिक सुधार योजना पर केंद्रित है जो न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करना चाहता है। सोमवार को पहली बार ज़ायोनी संसद नेसेट में इस पर मतदान होने की संभावना है। सरकार की गुणवत्ता के लिए आंदोलन की याचिका को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नेतन्याहू को अपना पक्ष रखने के लिए एक महीने का समय दिया है। नेतन्याहू की कैबिनेट में न्याय मंत्री यारियो लेविन द्वारा इसराइल में न्यायिक सुधार योजना पेश किए जाने के बाद इसकी व्यापक आलोचना हुई और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। इस योजना का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार को पूर्ण नियंत्रण देना, अदालत की शक्ति को सीमित करना और संसद को सिर्फ एक वोट के बहुमत से उन कानूनों को फिर से बहाल करने में सक्षम बनाना है जिन्हें अदालत ने रद्द कर दिया हो। छठी बार सत्ता पर कब्जा करने वाले नेतन्याहू का कहना है कि न्यायपालिका ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपनी हदें पार की हैं। नेतन्याहू के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि वास्तव में सरकार की गुणवत्ता के लिए आंदोलन नेतन्याहू की सरकार को गिराने की एक साजिश है और इसमें और सैन्य तख्तापलट में कोई अंतर नहीं है। किसी भी ताकत को, यहां तक कि सर्वोच्च अदालत को, इसका अधिकार नहीं है। सिर्फ जनता ही ये फैसला कर सकती है कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहेगी। इसराइल में पिछले कई वर्षों से जारी राजनीतिक गतिरोध गहराता जा रहा है जिसके नतीजे में पिछले चार वर्षों के दौरान 5 आम चुनावों का आयोजन हुआ। अर्थशास्त्रियों और उद्यमियों का मानना है कि अगर मौजूदा राजनीतिक टकराव जारी रहता है तो निकट भविष्य में ज़ायोनी शासन को गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट झेलना पड़ सकता है।
और अब हम रुख करते हैं भारत का।
भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 शो शुरू हुआ जिसमें लगभग 100 देशों के 700 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं और अपनी नवीनतम एवं विकसित रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन कर रहे हैं। एरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि ये भारत के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह एरो शो एवं प्रदर्शनी भारत की बढ़ती हुई रक्षा शक्ति को दर्शाती है और इतने देशों की उपस्थिति इस बात की परिचायक है कि विश्व का विश्वास भारत पर बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम रक्षा क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं और जो देश दशकों तक सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का आयातक था वे अब विश्व के 75 देशों में अपने रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। उनके अनुसार 2021-22 में अब तक हमने $1.5 अरब से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है और हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक निर्यात के आंकड़े को 1.5 अरब से बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाया जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका गंवाएगा और न ही मेहनत करने में पीछे हटेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र ने कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है और सफलता के कई पड़ाव पार किए हैं। एयरो इंडिया 2023 प्रदर्शनी एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी बताई जा रही है, जो 17 फरवरी तक चलेगी, जिसमें देशी और विदेशी रक्षा उपकरणों और क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। शो के दौरान हवाई कर्तव्यों, बैठकों और सेमिनारों का भी आयोजन किया जा रहा है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा हमारे साथी कायम रिजवी से सुन रहे थे। अब आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है कार्यक्रम विश दर्पण।
विश्व दर्पण। श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम विश्व दर्पण में। मैं हूं अहमद अब्बास। आज हम बात करेंगे अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण की, जिसमें अमेरिका की कमजोरियां साफ नजर आई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमरीकी संसद में भाषण दिया और हर अमरीकी राष्ट्रपति की तरह उनकी भी भरपूर कोशिश रही कि खुद को और अमरीका को सुपर पावर के तौर पर पेश करें, लेकिन भाषण में अमरीका की मजबूती तो नजर नहीं आई, हां फरियाद जरूर सुनाई दी। जो बाइडेन की स्पीच का अच्छा खासा भाग चीन के बारे में बातें करते गुजरा, वहीं यूक्रेन की जंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर भी उनके दिमाग पर सवार रहे।
Putin's invasion has been a test for the ages. Test for America, a test for the world. Would we stand for the most basic of principles? Would we stand for sovereignty? Would we stand for the right of people to live free of tyranny? Would we stand for the defense of democracy?
राष्ट्रपति बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में कहा कि मेरे सत्ता संभालने से पहले चीन की ताकत बढ़ने और दुनिया में अमेरिका के पिछड़ने की कहानी सुनाई देती थी, लेकिन अब और नहीं।
Before I came to office, the story was about how the People's Republic of China was increasing its power and America was failing in the world. Not anymore. We made clear, and I made clear in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing and to make America stronger.
बाइडेन के इस वाक्य पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ बाइडेन ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके सत्ता संभालने से पहले अमेरिका के पिछड़ेपन की बातों की गूंज सुनाई देती थी। उनका ये कहना सही है, मगर इसके बाद बाइडेन ने जो कहा कि अब ये गूंज नहीं सुनाई देती, इस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद दुनिया में अमेरिका की पोजीशन और ताकत के सिलसिले में ऐसा कौन सा बुनियादी बदलाव कर दिया कि चीन के बारे में अनुमान और सोच बदल जाए, इसका जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। बाइडेन का चीन को लेकर रोना जारी रहा। उनका कहना था कि मैंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ये स्पष्ट कर दिया कि हम प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, संघर्ष नहीं। मैं इस बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा कि हम अमेरिका को ताकतवर बनाने के लिए निवेश कर रहे हैं। हम अमेरिका में नई चीजों और उद्योगों में निवेश कर रहे हैं जो हमारा भविष्य तय करेंगे, लेकिन चीन की सरकार हावी होने पर जोर दे रही है।
Investing in American innovation and industries will define the future that China intends to be dominating. Investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us.
उद्योगों को लेकर चीन की क्या नीति और क्या कार्यशैली है, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये जमीनी सच्चाई है कि अमरीकी उद्योगों पर भारी दबाव है। अमरीका में इन्फ्लेशन की स्थिति और इसके नतीजे में पैदा होने वाली आर्थिक कठिनाइयों और बेरोजगारी का मसला गंभीर है। बाइडेन ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश की तुलना में आज हम चीन के सामने सबसे मजबूती से खड़े हैं। जहां अमेरिकी हितों और दुनिया के लिए फायदे की बात होगी, वहां मैं चीन के साथ काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध हूं। किसी तरह की गलती ना करते हुए हमने बीते हफ्ते से ये स्पष्ट कर दिया कि अगर चीन हमारी संप्रभुता पर खतरा बनेगा तो हम अपने देश की रक्षा करेंगे, और हमने ऐसा किया। बाइडेन का इशारा चीनी बलून की तरफ था जिसे अमेरिका ने मार गिराया। बाइडेन की स्पीच में अमेरिका की कमजोरी एक जगह और भी साफ नजर आई। बाइडेन ने कहा कि एक बात और स्पष्ट कर दूं, चीन से प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए हम सबको एक होना होगा। हम पूरी दुनिया में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसमें भी सीधे रूप से ये बात स्वीकार की गई है कि अमरीका चीन के सामने लाचार है। अमरीका जिस समय अफगानिस्तान से बाहर निकला तभी से ये चर्चा व्यापक रूप से शुरू हो गई कि अमरीका का पतन अब आगे बढ़ रहा है, यानी अमरीका के पतन की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। अमरीका की पश्चिमी एशिया के मामलों की विशेषज्ञ हिलेरी मान लिवरेट का मानना है कि बाइडेन के शासनकाल में अमरीका की नीति यह है कि सोसाइटी निर्माण के बजाय अपनी छावनियों में लौटा जाए और खुद को मजबूत किया जाए।
And one that will be focused on the use of force, not rebuilding societies as George W. Bush tried to after 9/11.
मगर अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत में जर्नलिज्म के प्रोफेसर रामी खोरी का मानना है कि अमेरिका के हस्तक्षेप से इलाके को बहुत नुकसान पहुंचा। अमेरिका नए प्रकार के कॉलोनियलिज्म को विस्तार दे रहा है, और ये भी हकीकत है कि ईरान ने अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया है।
Oh, I see it as a real threat to the region because it's the basics of American foreign policy as well as the autocrats in the region and many others, the Israelis and others. The basics of the last 30-40 years have brought this region to a point of almost social collapse. You know, we just had a couple of reports that were published by UN agencies and others showing something like around 70% of primary and secondary school students in the Arab world are not able to read and write properly. They're almost illiterate. That's incredible. A sign of what's to come in this region when you combine it with unemployment and poverty and other things. So it's the basics that we've suffered. Foreign military intervention, 100 years of the Arab-Israeli conflict, unchecked Arab autocracy, rampant corruption and out-of-control militarism, very much fueled by foreign military sales. Those basics are a real, real nightmare for the region. This is one of the problems that people in the region, in the Arab region especially, really have no way to confront it. The Iranians are the only people who are putting up some resistance. And
Vish Darpan. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
इस्लामी इनकलाब के नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि अमरीका कई प्रकार की गंभीर समस्याओं में गिरफ्तार है। देश के भीतर भी उसकी समस्याएं हैं और देश के बाहर उसके कैलकुलेशन बार बार गलत हो रहे हैं, और इसी वजह से उसे शिकस्त का सामना भी बार बार करना पड़ रहा है।
بی سابقه است، هم مشکلات اقتصادیشون، هم مشکلات اجتماعیشون، هم مشکلات اخلاقیشون، دو دستگی های خونینشون در داخل آمریکا.
بھارت کے جانے مانے دھرمگرو سلمان ندوی بڑی جوشیلی تقریر میں کہتے ہیں کہ امریکہ کا پتن ہوگا اور فرعونی طاقتیں ختم ہوں گی۔ یہ بات وہ 2023 کے لیے کہہ رہے تھے۔
اس میں امریکہ کا زوال ہوگا، امریکہ کا زوال ہوگا۔ 2023 سے جو دور اگلا آ رہا ہے اس میں اسلام کا غلبہ عالمی سطح پر ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا میں ایک ابال ہے، پوری دنیا میں ایک کلیش برپا کر دیا گیا ہے، پوری دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار کی تیاریاں ہیں، پوری دنیا میں ظلم کا نظام ہے، پوری دنیا میں وقت کے فرعون ہیں جو دندنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ اصلاً اسلام سے ہے، وہ اسلام دشمنی میں باولے ہو رہے ہیں اور اسلاموفوبیا کی بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہمارا جو کام ہے ہندوستان میں بھی اور انشاءاللہ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی اور افریقہ میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی، دنیا کے ہر ملک میں صدا لگائی جائے گی اور قرآن کو پوری طاقت کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔
جو بائیڈن نے اپنے بھاشن میں پوتین کی بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم پوتین کی آکرامکتا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ بائیڈن نے نیٹو سہیوگیوں کی تعریف کی، انہوں نے کہا ایک ساتھ مل کر ہم نے وہ کیا جو امریکہ ہمیشہ سب سے اچھے سے کرتا رہا ہے، ہم نے نیتریتو دکھایا۔ امریکی راشپتی نے کہا ہم نے نیٹو دیشوں کو ایک جٹ کیا اور ایک ویشوک گڑھ بندھن بنایا، ہم پوتین کے خلاف کھڑے ہوئے اور ہم نے یوکرین کے لوگوں کا ساتھ دیا۔
We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people. Tonight, we're once again joined by Ukraine's ambassador to the United States. She represents not her, just her nation, but the courage of her people. Our ambassador is here. United, we're in united in our support of your country. Will you stand so we can all take a look at you?
بائیڈن یوکرین کے مسئلے میں لاکھ بڑی بڑی باتیں کر لیں، مگر یہ امریکہ اور پشمی دیشوں کی ناکامی کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ یوکرین امریکہ اور پشمی دیشوں کی نیتیوں اور منصوبوں کی بھینٹ چڑھ کر تباہ ہو گیا۔ امریکہ اور پشمی دیش یوکرین کو ٹینک بھی دے رہے ہیں اور میسائل بھی دے رہے ہیں، اب تو یدھک ویمان بھی دینے کی باتیں کہی جانے لگی ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ یوکرین جنگ سے تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ امریکہ کے نیتریتو میں نیٹو نے روس کو گھیرنے کی کوشش کی اور اس منصوبے میں یوکرین کے کندھے پر رکھ کر اپنی بندوق چلائی، لیکن آج اگر نتیجے پر غور کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یوکرین بری طرح تباہ ہوا۔ ایک سال کا سمے پورا ہونے والا ہے اور جنگ رکنے کے لکشن دور دور تک دکھائی نہیں دیتے، بلکہ انتراشٹریہ استر پر ہونے والے پریورتنوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پشمی دیش اس یدھ کی آگ بجھنے نہیں دینا چاہتے۔ انہیں یہ امید ہے کہ لڑائی لمبی چلے گی تو روس کمزور ہوگا، مگر اس بات کو ایک بار پھر وہ عراق اور افغانستان کی جنگوں کی طرح نظر انداز کر رہے ہیں کہ کتنی بڑی سنکھیا میں بے گناہ ناگرک ان کے وستاروادی منصوبے کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کا لمبا مقابلہ اسلامی گنراجی ایران سے چلا ہے، جس نے ابھی 11 فروری کو اسلامی کرانتی کی 44ویں سالگرہ کا جشن منایا ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت کو 1979 میں جو چنوتی دی گئی وہ امریکہ کی ساکھ کو دن بدن کمزور کرتی چلی گئی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ شوداؤ کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، شروتاؤں بھی آپ کارکرم وش درپن سن رہے تھے، ہمارے ساتھی احمد عباس سے، اور اب آپ کی سیوا میں جو آج کی سبھا کا انتیم کارکرم ہے وہ ہے صحت کا راز۔
صحت کا راز،
दोस्तों, कार्यक्रम सेहत का राज की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, फलों और मेवों से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम में आज हम जिस फल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वास्तव में ड्राई फ्रूट है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कोरिलस एवेलाना। ये स्वादिष्ट एवं पौष्टिक ड्राई फ्रूट्स अब पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय मेवे के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। इसका उत्पादन ग्रीस, इटली और अमरीका में व्यापक पैमाने पर होता है। वैसे हेजलनट के बारे में बताया जाता है कि ये तुर्की में बहुत बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है। पूरी दुनिया में हेजलनट का जितना भी उत्पादन होता है उसका लगभग 75% उत्पादन केवल तुर्की में ही किया जाता है।
ईरान में भी हेजलनट पैदा होता है, जिसको यहाँ पर फंदुक के नाम से जानते हैं। ईरान में कज़वीन, रुतसर, गिलान, रामसर और मजंदरान में फंदुक की खेती की जाती है। ईरान में पैदा होने वाला ये फल उच्च क्वालिटी का होता है, जिसे निर्यात भी किया जाता है। हेजलनट में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। इस सूखे मेवे को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक के अतिरिक्त कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं।
वैज्ञानिकों की खोज से ये पता चला है कि हेजलनट या फंदुक का इतिहास 7000 वर्ष ईसा पूर्व की ओर जाता है। सन 1995 में स्कॉटलैंड के कोलोन द्वीप पर एक गड्ढे के भीतर बहुत बड़ी मात्रा में ये पाए गए थे। इनका संबंध मैथोलिक या मध्यपाषाण काल से था। इस हिसाब से ये लगभग 9000 वर्ष पुराने थे। उस स्थान पर हजारों की तादाद में जले हुए हेजलनट पाए गए थे। विशेष बात यह है कि एक ही स्थान पर इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कभी जले हुए हेजलनट देखे गए हों। इनकी पहचान 7000 ईसा वर्ष पूर्व रेडियोकार्बन तकनीक के माध्यम से की गई थी।
दोस्तों, हेजलनट या फंदुक का पेड़ लगभग 2 मीटर का होता है। इसके पत्ते चौड़े और नुकीले होते हैं। इसके ऊपर हरे रंग का प्राकृतिक कवर होता है, जो सूखने के बाद उससे अलग होकर गिर जाता है। ये एक ऐसा फल है जो गोलाकार या फिर अंडाकार होता है। इस फल का बाहरी हिस्सा रेशेदार होता है, जो बाद में फल से अलग होकर गिर जाता है। विश्व के कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के हेजलनट पाए जाते हैं। कुछ हेजलनट आकार में काफी बड़े होते हैं। हेजलनट के पक जाने पर इसकी छाल या खाल सूख कर गिर जाती है और उसका गुदा बाकी रहता है। इस पर बहुत ही पतली गहरी भूरे रंग की एक झिल्ली सी होती है। हेजलनट को खाते समय उसको हटा दिया जाता है, जिसके बाद भीतर से सफेद रंग का उसका सूखा हुआ गुदा निकलता है। इसको कच्चा या फिर भून कर भी खाया जाता है।
हेजलनट के भीतर बहुत से पोषण तत्व पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के विटामिन्स का स्वामी होता है। हेजलनट या फंदुक ओमेगा 6 तथा ओमेगा 9 और वसा से भी समृद्ध होता है। इसीलिए ये हृदय के लिए बहुत लाभदायक बताया गया है। इसके भीतर विटामिन ई, विटामिन B6 और विटामिन B1 के साथ ही साथ जस्ता, तांबा, मैग्नीज, फोलेट, मैग्नीशियम, फाइबर तथा कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जिसके कारण उसमें बहुत से उपचारिक गुण पैदा हो जाते हैं। हेजलनट से हमको जो पहला लाभ मिलता है वो ये है कि एक स्वस्थ हृदय प्रणाली को बनाए रखने में ये मदद करता है। इसमें ऑलिक एसिड होता है, जो LDL या खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है।
हेजलनट की एक विशेषता ये भी है कि वो शरीर के भीतर HDL कोलेस्ट्रॉल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बनाए रखने में प्रभावी होता है, बल्कि कुछ अवसरों पर उनको बढ़ाने की भी क्षमता रखता है। इस सूखे मेवे में बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की एक विशेषता ये होती है कि वे मानव शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। इस प्रकार का तनाव कोशिकाओं की संरचना को नष्ट कर सकता है। यही तनाव कभी कैंसर का भी कारण बनता है और कभी दिल की बीमारियों को भी बढ़ा देता है। हेजलनट में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसको फेनोलिक के रूप में जाना जाता है।
चिकित्सकों का ये मानना है कि शरीर में सूजन को कम करने में ये सहायक सिद्ध होता है। दिल की सुरक्षा के लिए भी हेजलनट को एक बहुत अच्छा मेवा माना गया है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है जो शरीर के भीतर कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसका लाभ शरीर को ये मिलता है कि शरीर के भीतर अधिक कैल्शियम होने से ये रोक देता है। डॉक्टरों का कहना है कि मनुष्य के शरीर के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी अधिकता से दिल की धड़कनों के अनियमित होने का खतरा भी बना रहता है। जब शरीर के भीतर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है तो हृदय शांत रहता है।
मैग्नीशियम की विशेषता ये है कि वो मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। ये मांसपेशियों के तनाव या खिंचाव को भी कम कर सकता है। इसमें मांसपेशियों के ऐठन और दर्द को रोकने की क्षमता होती है। अध्ययनों से ये ज्ञात होता है कि मैग्नीशियम की सही खुराक मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायता करती है। हेजलनट में बड़ी मात्रा में मैंगनीज भी पाया जाता है। मैंगनीज को हड्डियों के घनत्व तथा उनके भीतर सुधार के लिए उपयोगी पाया गया है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बहुत सी बीमारियों से मुकाबला करने में सक्षम है। हेजलनट का मैग्नीशियम और पोटेशियम का उच्च स्तर शरीर के उच्च रक्तचाप को कम करता है।
इस फल की एक अन्य विशेषता ये भी है कि ये पाचन क्रिया में सुधार में उपयोगी साबित हुआ है, क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है। हेजलनट में उच्च मात्रा में विटामिन ई भी मौजूद होता है। चिंता, तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में हेजलनट अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाता है। इसके भीतर पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3, फैटी एसिड, विटामिन B6 और सेरोटोनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। वे तनाव तथा चिंता को कम करने और अवसाद के उपचार के लिए प्रभावी बताए गए हैं।
दोस्तों, अध्ययनों से ये भी पता चला है कि हेजलनट के भीतर आयरन की भरपूर मात्रा शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने और खून की कमी या एनीमिया के उपचार में मदद करता है। इसमें थायमिन का उच्च स्तर होता है जो शरीर को स्फूर्ति देता है तथा लोगों के वजन को कम करता है। हेजलनट में पाया जाने वाला फाइबर भूख को कम करता है, जिससे शरीर के वजन को कम करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कम मात्रा में हेजलनट का प्रयोग करने से शरीर का वजन कम होता है, किंतु इसके अधिक सेवन से ये बढ़ भी जाता है।
यदि कोई व्यक्ति अपना वजन बढ़ाना चाहता है तो उसे प्रतिदिन लगभग 65 ग्राम तक हेजलनट खाने चाहिए। ये विटामिन से समृद्ध होता है। ये फल न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसके बहुत से स्वास्थ्य लाभ भी हैं। शरीर की कई बीमारियों को दूर करने में हेजलनट उपयोगी होता है। नियमित रूप से इस मेवे का प्रयोग करने वाले लोगों के भीतर दिल के दौरे के कारण होने वाली मौत का जोखिम लगभग 50% कम हो जाता है। अन्य मेवों की तुलना में हेजलनट फोलेट का बहुत अच्छा स्रोत है। फोलेट गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक चीज़ है। ये बच्चों को कई प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखता है।
हेजलनट रक्त संचार को सही रखता है और साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, जिसके कारण मनुष्य को जल्दी सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या नहीं होती। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को आजकल ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है। ये बीमारी अब आम हो चुकी है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में हेजलनट की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से अपने आहार में हेजलनट को शामिल करके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके प्रयोग से त्वचा खिली हुई रहती है। हेजलनट में बहुत मात्रा में विटामिन ई पाई जाती है, इसलिए वो त्वचा के लिए फायदेमंद है। ये फल शरीर पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ने देता।
हेजलनट या फंदुख का तेल भी निकाला जाता है। ये पीले रंग का तेल कई प्रकार के रोगों को दूर करने में प्रभावी है। हेजलनट का तेल स्वादिष्ट होता है, इसलिए कुछ लोग इसको सलाद में डालकर भी खाते हैं। अगर हम अपने दैनिक आहार में हेजलनट को शामिल करते हैं तो इसके लाभ का आभास हम स्वयं ही कर सकते हैं। इसका नाश्ते में प्रयोग सबसे अधिक लाभकारी बताया जाता है। इसका प्रयोग चॉकलेट बनाने में भी किया जाता है। कुछ देशों में मिठाई में हेजलनट को प्रयोग करते हैं। एक शोध से ये भी पता चला है कि ब्रेड में हेजलनट को मिलाने से पाचन क्रिया सुचारू रूप से अपना काम करने लगती है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अनुमति चाहते हैं।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। तो अगली सभा तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Thank you.